पिछली बार नवे अध्याय में हमने कुछ बातों को देखा था और नवे अध्याय के जब अंतिम भाग में हम गए थे तो हमने इस बात को देखा था कि सुलेमान बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बात को कह रहा है और वो क्या कह रहा है कि बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ है, युद्ध के अस्त्रों से बुद्धि उत्तम है। वो बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है और बाइबल परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, मूल है। सुलेमान ने सबसे अधिक बुद्धि के बारे में बातें लिखी हैं, चाहे वो नीति वचन हो, चाहे वो सब उपदेशक हो, कहीं भी उसने, और उसने बुद्धि की खोज की। दूसरी चीज वो कहता है बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ है और इन 16 से 18 पदों पिछली बार हमने देखा था कि मानवीय क्रियाकलाप सफलता के निश्चय नहीं दिखते। जो हमारे अपने सोच विचार हैं वो जरूरी नहीं कि वो हमें सफलता में ले जाए। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारी योजना, हमारी मानवीय जो सोच है, कल्पना है, वो जरूरी कि हमें सफलता में ले जाए, ये सुलेमान स्पष्ट करता है। शक्ति देखने में अधिक प्रभावित लगती है, देखने में तो अधिक प्रभावित लगती है। छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप आते हैं बाहर, तो जब शुरू शुरू में ये हम लोगों ने नाली ढकने के लिए पटरे बनाए थे, बहुत हैवी है और चार चार पाँच पाँच छः छः बच्चे उसको उठाने के लिए मुश्किल, क्योंकि सीखा था मैंने, तो मैंने उनसे कहा आप परेशान मत होइए, मैंने कहा एक पाइप लेकर आइए और नीचे पाइप रखा, हल्का सा पुश किया, वो आगे बढ़ने लगे। जहाँ छः लोग नहीं उठा पा रहे थे वहाँ उस पाइप को रखने के कारण, तो शक्ति से उठाना चाह रहे थे लेकिन नहीं उठा पा रहे थे, पर उस पाइप को रखा, उस पाइप के सहारे, क्योंकि पाइप रोलर का काम करता है और उसी सहारे, जरा आप भी अपने घर में कभी ऐसा करके देखेगा, और उसको जरा से पुश करेंगे वो उसी सहारे आगे बढ़ता जाएगा, बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुलेमान यही कहना चाह रहा है कि बुद्धि जो है वो शक्ति से श्रेष्ठ है, बड़ी है। तो शक्ति देखने में अधिक प्रभावित करने वाली होती है परंतु बुद्धि से अधिक नहीं। बुद्धिमान की सम्मति सामान्य रीति से लोकप्रिय नहीं होती। कई बार जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं अगर किसी को सम्मति देते हैं, सलाह देते हैं, वो लोगों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके दिमाग में अपनी चीज़ें जमी रहती हैं और बहुत सारे इसको मानते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। परंतु वो सम्मति जो बुद्धिमत्ता के साथ दी जाती है वो मनुष्य के लिए आशीष और लाभ का कारण बनती है और इन बातों को हमें समझना है। मानवीय शासक बुद्धिमान सम्मति को ऊंची आवाज से दबा देंगे। जो सांसारिक शासक हैं, राजा हैं, अगुए हैं, लीडर हैं, जो भी आप कह सकते हैं इनको, वो अपनी ऊंची आवाज़ से इसको दबा सकते हैं और मूर्ख जो है वो इसी तरह की बात चाहता है। मेरे प्रियो, वो बार बार बात समझा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। इस अध्याय 10 में 20 पदों में खास बात ये है और इसमें वो कह रहा है मूर्ख के बारे में, ईमान पुरुष और मूर्ख पुरुष। मूर्खता से बुद्धि उत्तम है, ये आज का मुख्य विषय है और इस 10 अध्याय में सुलेमान बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें बार बार इस बात को सिखाना चाहता है कि किस प्रकार से। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुख्य जो बात है, मूर्ख की तुलना बुद्धिमान से बाइबल में लगभग मूर्खता शब्द 180 बार आया है। मूर्ख शब्द उस व्यक्ति को परिभाषित करता, ध्यान दीजिएगा, जो संसार के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, जो संसार के अनुसार जीवन व्यतीत करता है उसके दृश्य में ठीक है, वो बाइबल पढ़ सकता है, चर्च जा सकता है, दुआ करता है, सब कुछ है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा हमेशा संसार 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 की ओर लगा रहता है, संसार के कार्य, संसार की बातें उसमें लगाता है। लेकिन बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को जानता है, उसके साथ उसका संबंध है, वो परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर जीना चाहता है। मूर्ख मनुष्य है उसको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, उसको अपनी बातों से मतलब है, अपनी योजना से मतलब है। बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर के वचन को स्वयं के लिए लेता है, बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर के वचन को स्वयं के लिए लेता है। जब परमेश्वर के वचन को चाहे पढ़ने के द्वारा, चाहे सुनने के द्वारा, चाहे किताब पढ़ने के द्वारा, चाहे वचन पढ़ने, उससे हम अपने लिए उसको लेते हैं। मूर्ख स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रखता है, उसके अंदर घमंड है, मैं ही सब कुछ हूँ। मूर्ख व्यक्ति नैतिक और आत्मिक रीति से किसी की सलाह नहीं लेता और जैसा वो चाहता है वो जीना चाहता है। मैं आज़ाद हूँ, मेरा कभी नहीं, मुझे जो करना है मुझे करना है, मैं जानता हूँ, मेरे पास समझ है, मेरे पास बुद्धि, और इसीलिए बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने दृश्य में बुद्धिमान ना होना, यहोवा को स्मरण करके सारे काम करना तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बुद्धिमान परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मिक लोगों पर निर्भर होता है। बुद्धिमान परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के आत्मिक लोगों पर निर्भर होता है। वो लोग जो परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर का आत्मा मनुष्य को पाप से अलग रह करके भय के साथ जीना सिखाता है। कई बार लोग कहते हैं, अरे जब तक जोर से चिल्लाया ना जाए तब तक पवित्र आत्मा नहीं। नहीं नहीं, नहीं। पवित्र आत्मा जीवन को पवित्र बनाता है, सबसे बड़ी बात है हमारा जीवन, हमारी चाल। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों 5:15 में कि निर्बुद्धि के समान ना चलो। भजन संहिता 14:1, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। आज भी हमने भजन संहिता 53 में पढ़ा और मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। वो परमेश्वर का इनकार करता है, वो कहता है परमेश्वर है ही नहीं। कई तरह के लोग हैं संसार में, कुछ कहते हैं कि परमेश्वर संसार को बनाया, उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर है। नित्यवचन 12:5 में मूर्ख की चाल अपनी दृष्टि में ठीक जान पड़ती है परंतु बुद्धिमान वही है जो सम्मति पर ध्यान देता है। मूर्ख को अपनी चाल ठीक दिखाई देती है अपनी दृष्टि में। नीतिवचन 12:15, प्रोवर्ब्स 12:15, प्रोवर्ब्स 14:9, 14:9, नीतिवचन 14:9, मूर्ख के लिए पाप का अंगीकार करना ठट्टों की बात है। तो मूर्ख पाप का अंगीकार नहीं करता, डिटाई में रहता है, बहाने लगाए, कुछ आप समझाइए, वो बहाने, कोई ना कोई बहाने लगाएगा। वो नम्रता के साथ नहीं कहेगा हाँ मैंने गलती करी है या मेरे से अपराध हुआ है, और इस ऐसा करने से बहुत उसकी हानि होती है। तो कुछ ये बातें, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते, एक दिन हम भी मूर्ख थे, अपने अनुसार चल रहे थे अपने मन के, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपनी दया में होकर के हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। हम तो पापी थे, नाशोर थे। और मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यही है कि परमेश्वर ने जगत थे अर्थात मुझसे और आपसे प्रेम किया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये टेबल में प्रभु की भोज में हमने यही बात को स्मरण किया, और वो एक दिन आएगा, वो जीठा आज पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। आज जब हम इस अध्याय में जा रहे हैं 10 अध्याय में, तो 4 मुख्य बातों को देखना चाहते हैं। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली बात 10वें अध्याय के पहले पद में, बुद्धिमता मान्यताओं को छोटी सी मूर्ता अमान्य कर देती है। अर्थात जो बुद्धिमान की एक मान्यताएं हैं वो छोटी सी मूर्ता उसको अमान्य कर देती है, उसको विनाश की ओर ले आती है। ठीक है बुद्धिमान है, उसमें मान्यता दी गई है, कुछ कुछ दिया सकना सकना, लेकिन एक छोटी सी मूर्ता, अर्थात बुद्धिमान को मूर्ता से और अधिक सावधान रहना है। हमें सावधान रहना पड़ता है, आपको रहना पड़ता है और रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रभु ने हमें अपने में चलाया है। परमेश्वर ने कहा यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना लाना के बहुतायत से दे सकता है। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 5 पद, हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए प्रभु मुझे बुद्धि दे हर चीज़ में। कई सारे हम निर्णय लेते हैं, थोड़ा सा देखा चमक देखी हम फिसल गए और हमने निर्णय ले लिया, बाद में कुछ अरे मैंने क्या कर दिया, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझ के साथ परमेश्वर पर निर्भर होकर, परमेश्वर के लोगों पर निर्भर होकर के निर्णय लेता है, ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात जो 10 अध्याय के 2 पद से लेकर 7 पद तक, बुद्धिमता एक बुद्धिमान व्यक्ति मान्यता को शासक की मूर्ता अमान्य कर सकती है। जो शासक है एक बुद्धिमान व्यक्ति, आप जहाँ कहीं भी हैं अगर आप बुद्धिमान हैं और बुद्धिमानता से चल रहे हैं लेकिन जो शासक है वो मूर्ख है तो आपकी जो चीज़ें हैं वो उसको बेकार कर सकते हैं क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, समझने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है तो तीसरी बात 8 पद से लेकर 11 पद तक, बुद्धिपूर्ण मान्यताएँ जो हैं जो कही जाती हैं सिद्ध ठहराई गई हैं वो अनुपयुक्त समय पर अमान्य हो सकती है। मतलब आपने कोई चीज़ को ठहराया है बुद्धिमानता से लेकिन समय सही नहीं है, समय के अनुसार वो चीज़ें नहीं हैं तो बेकार हो सकती हैं। इसलिए बुद्धि के साथ साथ समय का संचालन करना या समानता होना बहुत ज़रूरी है। अंतिम बात 12 पद से लेकर 20 पद तक, भविष्य के दृष्टिकोण को टालना जोखिम बना हो सकता है। चौथी बात, भविष्य के दृष्टिकोण को टालना जोखिम भरा हो सकता है, ये 12 से 20 पद तक। तो जो भविष्य में हमने दृष्टिकोण रखा है लेकिन उन चीज़ों को हम टाल दे रहे हैं, परमेश्वर कुछ दिखा रहा है सो अच्छा है, आइए हम पहले पद में जाएंगे। अब वो तुलना कर रहा है, जो भी 10 अध्याय है 10 अध्याय इस तरीके से लिखा गया है कि सुलेमान तुलना के साथ साथ समझाने की कोशिश कर रहा है। और हम उन दो बातों को, पहला भाग कुछ है दूसरा भाग है, जब हम तुलनात्मक दृष्टि से कोई चीज़ को समझना चाहते हैं वो क्या कह रहा है। मरी मक्खियाँ गंदी के तेल को दुर्गंधमय बना देती हैं। इसी प्रकार छोटे से मूर्ता बुद्धि और प्रतिष्ठा को मिटा देती हैं। उस समय में ऐसा होता था, बड़े बड़े जार होते थे और उन जारों में इत्र रखा जाता था, सुगंधित तेल रखा जाता था, और वो सुगंधित तेल जो होता था वो महल को या घरों को या कमरों को सुगंधित बनाता था। आज की तरह हमारे स्प्रे नहीं था, जैसे आज हम कहीं ये स्प्रे डालते हैं कहीं उस स्प्रे डालते हैं, उस समय वो नहीं था। तो तेल इकट्ठा किया जाता था और तेल जारों में रखा जाता था। इवन छोटा घर भी होता था तब भी उस घर में भी वो एक पात्र रहेगा जहाँ पे, वही तो पात्र मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ढूंढेला था। तो ये इसलिए रखे जाते थे ताकि उसके द्वारा घर सुगंधित रह सके। लेकिन उसमें जब मक्खियाँ धीरे धीरे गिर जाती थी और गिरने के बाद मक्खियाँ मर जाती थी, सड़ने लगे, तो तेल सड़ने लगता था, तो वो एक गंध की जगह क्या हो जाती थी, दुर्गंध आने लगती थी। तो यहाँ पर वो बता रहा है, तो जो प्रैक्टिकल देख रहा है, व्यवहारिक रीति से देख रहा है, उसका उदाहरण लेकर के वो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है मरी मक्खियाँ गंदी के तेल को दुर्गंधमय बना देती हैं, अर्थात वो कितना अच्छा तेल है, खुशबूदार तेल है, घर को महक दे रहा है, आपको महक दे रहा है, लेकिन उसी तेल में जो सुगंध दे रहा है उसी तेल में अगर मक्खियाँ गिर जाएं और गिरकर मर जाएं और उसके बाद वो तेल सड़ जाए तो वो गंध खत्म हो जाती है, फिर वहाँ दुर्गंध आने लगती है। इसी रीति से अब पहले भाग में ये है, एक उदाहरण उसने दिया है मक्खी का उदाहरण, वो मरी मक्खियाँ गंदी के तेल को दुर्गंधमय बना देती है। तो पहला उदाहरण दिया जिसको हम देख चुके हैं। अब उसके बाद इसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे मरी मक्खियाँ तेल को दुर्गंध बना देती हैं, उस सुगंध देकर सुगंध को खराब कर देती है, इसी प्रकार छोटी सी मूर्ता बुद्धि और प्रतिष्ठा को मिटा देती है। और इसलिए हमें बुद्धिमानता से निर्णय लेने चाहिए। कई बार हम अपने आप को बहुत अधिक समझदार समझते हैं और इसीलिए जल्दीबाजी बहुत सारे निर्णय लेते हैं। मेरे प्रियो, जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन कितना अधिक हम परमेश्वर से उसके सामने ठहरते हैं, प्रार्थना करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। जब हमारा दिन आरंभ होता है क्या हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आज हम नहीं जानते कौन हमारे पास आएगा, हमको किसके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, हमारी आप सहायता कीजिए, हमें समझ दीजिए कौन किस दिन में आएगा, हमें बुद्धि दीजिए। छोटी सी दिन को हम कैसा व्यतीत करना चाहते हैं। हम अपने कार्यालय में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हमारे अधिकारी हैं, होस्ता बहुत कठोर हो, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम उनकी अधीनता को स्वीकार कर सकें, या किसी न किसी रीति से के हृदय में हमारे प्रति प्रेम उत्पन्न करिए। बहुत सारे अनुभव हैं जो हम आपके सामने बांट सकते हैं, पर समय नहीं, लेकिन ये सच है जो लोग हमारे नीचे काम करते हैं प्रभु हमें बुद्धि दीजिए कि हम उनका कैसे संचालन कर सकें, कैसे उनके साथ व्यवहार कर सके, क्या वो हमारे व्यवहार से सच में खुश हैं और प्रभु को देख सकते हैं, तब हम प्रभु के संदेश को या सुसमाचार को उनको बांटें तो वो सुनने के लिए तत्पर तैयार हो। क्यों नहीं हमारे जीवन के द्वारा लोग बसते हैं, क्योंकि हम मूर्ता के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। हमने मसीह को पा लिया, हम बस इसी में, अब हमारा ध्यान फोकस केवल हम है। लेकिन वो कह रहा है मूर्ता दूसरे पद से लेकर के सातवें पद तक, जहाँ हमने देखा था बुद्धिमानता मानवताओं को शासक की मूर्ता अमान्य कर देती है, अब वो क्या कह रहा है दूसरे पद में, बुद्धिमान का हृदय उसको उचित बात की ओर रखता है परंतु मूर्ख का हृदय उसको विपरीत रखता है। मूर्ख और बुद्धिमान विपरीत है, अलग अलग उल्टा है। बुद्धिमान का हृदय उसको उचित बात की ओर रखता है, क्या सही है जीवन में, क्या करना है, हमारे निर्णय, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी संगति, हमारी कलीसिया, हमारी सेवा, हमारा जीवन क्या है, उचित रखता है बुद्धिमान। अगर हम परमेश्वर के साथ बुद्धिमान हैं तो परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है तुमको ऐसा, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति उसी को पलट देता है, वो अपने स्वार्थ में जीवन व्यतीत करता है, वो अपनी किसी और चीज़ में, किसी के उसमें बहकाने में आकर चल रहा है, क्योंकि उसके पास अपना स्वयं का निर्णय लेने की बुद्धि नहीं है, उसके पास अपने स्वयं के निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, वो नहीं देखता कि मेरे निर्णय के द्वारा क्या कुछ हो रहा है। और कितने लोग हैं तुरंत निर्णय ले लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है अरे हमें निर्णय लिया है गलत है, और फिर वो बेचारे वापस भी नहीं आने पाते, सावधान होना है। और इसीलिए पहले से एक विश्वासी होने के नाते हमें देखना, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, तब और अब प्रभु का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपलब्ध है, प्रभु धन्यवाद, प्रभु का वचन हमारे लिए उपलब्ध है, प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है। हम परमेश्वर के आत्मा से प्रार्थना मांग सकते हैं, प्रभु अपने आत्मा द्वारा हमें बुद्धि दे, समझ दे, अगुवाई कर, हमारी हमारी सहायता कर कि हम सही रीति से प्रभु आपके मार्ग पर चल सकें। प्रभु हमारे साथ है, हमें परमेश्वर से मांगना है, अपने कार्य पर के मिलाना है, अपने संबंधों के लिए मांगना है। हम सिर्फ बीमार है तो बीमारों के लिए मांग लिया, कोई बुरा नहीं है, लेकिन केवल हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बाकी अपने लिए क्यों प्रार्थना नहीं करते, अपने जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने आत्मिक स्वभाव के लिए नहीं प्रार्थना करते, अपने आत्मिक बदलाव के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो हमारी प्रार्थना अधूरी है, स्वार्थी है। क्यों प्रभु चाहता है कि हम उसके स्वरूप पर बनते चले जाएँ अंश अंश करके, और ये कैसे होगा? हमें प्रयास करना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा, प्रयास करना है, प्रार्थना करना स्वयं के लिए। और ये कहता है कि बुद्धिमान का हृदय उसे उचित। तीसरा पद, मार्ग पर चलते समय भी मूर्ख में समझ का अभाव होता है। एक समय मैं मूर्खता किया करता था मार्ग पर चलते चलते, प्रभु धन्यवाद हो मेरी पत्नी के लिए, और मेरे को अगर रास्ते में कोई भी चीज़ कुछ भी हो जाता, किसी को कोई परेशान कर रहा है या कुछ कुछ कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लगता था, और कई बार लोग मेरे से नाराज भी हुए। तो उन्होंने एक दिन नीति वचन का पद को सुना दिया मुझे, मेरी वाइफ ने, आंटी ने, कि नीति वचन में सुलेमान कहता है चलते समय तू कुत्ते के कान को मत मरोड़ा, कहीं ऐसा ना कि वो तुझे पर आके काट ले। तो उन्होंने यही कहा, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर बाद में मैंने समझा इस बात को कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सारी घटनाओं को भी सुना गया, धीरे धीरे प्रभु ने मुझे समझाया, सीखा मैंने। मेरे प्रियो सचमुच में हमें वो कह रहा है, चलते समय कह रहा है, चलते समय भी मूर्ख में समझ का अभाव होता है। वो सोच रहा मैं तो बहुत बलवान हूँ, वो सोच रहा मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो इसका सामना कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अपने रौब दिखा दूंगा। नहीं नहीं, हानि हो सकती है। तब वो क्या कहता आगे चल करके, और वो प्रत्येक का ये प्रकट करते चलता है कि मूर्ख है। इसके द्वारा वो क्या प्रकट कर रहा है? सोच रहा मैं समझदार हूँ, लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? अरे मूर्ख है। हमारे कई बार जीवन के निर्णय को देख कर लोग कहते हैं, इसने क्या निर्णय ले लिया, अरे उसने क्यों ऐसा कर लिया, क्या हो गया। लोग उसको देखते हैं मूर्खता का निर्णय, जल्दीबाजी का निर्णय, कई सब बार हमें समझना है इस बात को। तब आगे चल करके, यदि शासक का क्रोध तेरे ऊपर बढ़, यही चीज़ है कि बुद्धिमानता माताओं को शासक की मूर्खता अमान्य कर सकती है। यदि शासक का क्रोध तेरे विरुद्ध बढ़ के तो अपना स्थान ना त्यागना, क्योंकि संयत रहने से बड़े बड़े अपराध ढक जाते हैं। कई बार किसी ने कुछ कह दिया, हमारे अधिकारी, मैं फैक्ट्री में काम करता था, बहुत डांट सुनने को मिलती थी, कई बार ऐसा लगता था अभी छोड़ के चले जाए, और बहुत गुस्सा आता था। और कई बार लोगों के साथ ऐसी होता है, कह रहा अगर शासक तुझे डांटता भी है, कोई भी शासक किसी भी जगह तुझे डांटता भी है, कई शासक कई तरह हमें काम में है, जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे अगुए हैं, हमारे और प्रधान हैं, किसी भी रीति से अगर वो डांटे तो तू अपने स्थान को मत त्यागना। क्यों डांट दिया मुझे? मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा। बाद में परेशान हो रहे हैं, रोटी रोटी के लिए तरस कर। कितनी बार लोगों को देखा गया कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि जरा सी सुन, लेकिन नहीं, कई बार वही चीज़ हमारे जीवन को संभालती हैं, सुनती हैं। वो कह रहा तू अपने स्थान को मत त्यागना, क्योंकि संयत या संयम में रहने से बड़े बड़े अपराध रुक जाते हैं, संयम में रहने से, धीरज से रहने से। और हम कोई नहीं है कि जहाँ कहीं या हमें स्वयं को डांट ना मिले या हमने दूसरों को डांटा ना हो। हम ऐसी जगह पे हैं, मनुष्य का संबंध जब मनुष्य से होता है, कोई हमारा अधिकारी है और या हम किसी का अधिकारी है, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप पाई जाती है। तो वचन केवल हमारे अधिकारी के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, दोनों के लिए, हम किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार। कई बार सो ये कहता है, और इसलिए आगे चल के वो कहता है पाँच सातवें पद में, एक बुराई है जो मैंने स्वर्ग के नीचे देखी। क्या देखी वो? जैसे कि वो भूल जो शासक से होती है, वो ये है कि मूर्ता उनको उच्च स्थानों पर स्थापित करती है। अब ये देखिए, जबकि धनवान निम्न स्थानों पर बैठते हैं, मैंने दासों को घोड़े पर सवार और राजकुमारों को दासों के समान भूमि पर पैदल चलते देखा। ये बड़ी अजीब बात है कि जो मूर्ख है कई बार वो प्रधान बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। अरे ये कैसे बन गया? अरे ये तो बेकार आदमी, कैसे ये तो, ये फलाना फलाना फलाना, ये हमारा। कई बार ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था, और जब मैं आशा कर रहा था कि शायद मेरा प्रमोशन हो जाएगा सुपरवाइजर के, लेकिन उनका हो गया। अरे कैसे हो गया? और कई दिन तक मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन बाद में प्रभु ने मुझे सिखाया, सच मुझे होना मेरा था। कई बार आप भी इसी चीज़ को जाने, और मैं परमेश्वर धन्यवाद हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ कि परमेश्वर मुझे ऐसे अनुभव में लेकर गया है, बचपन से जंगल में रहने का अनुभव, बकरी चुगाने का अनुभव, उनको संभालने का, लकड़ियों से जड़ काटने का, वो सारे अनुभव से, फिर एचएन में आके बहुत सारे अनुभव सीखे, परमेश्वर ऐसे अनुभव से ले गया है, वो आज मेरी सेवा में, मेरी पढ़ाई में, मेरे वचन को सीखने में बहुत मददगार ठहर रहे हैं। प्रभु मुझे और आपको ये परिस्थिति में ले आता है, लेकिन कितना अधिक हम उन बातों को अनुभव से सीखने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, ये हमारे ऊपर भी निर्भर है। सो ये है कि जो मूर्ख हैं वो पद प्राप्त कर लेते हैं, जो योग हैं वो नीचे रहते हैं, और आप जानते हैं कई जगह ऐसा होता है ना, जो योग हैं वो बेचारे नीचे रहते हैं, जो योग्य नहीं है उनको कहीं अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छे पद मिल गए, अच्छा सब कुछ हो गया, वो ऊंचा जा रहे हैं, तब हम परेशान होते हैं। कह रहा है मैंने देखा है सूरज के नीचे, मैंने सूर्य के नीचे ये देखा है, और ऐसा है, एक बात कहता है, मैंने दासों को घोड़े पर सवार और राजकुमार के दासों के समान भूमि पर पैदल चलते देखा। अर्थात राजकुमार जो हैं, दास जो हैं, वो भी भूमि पर चलते हैं, एक स्थान है जहाँ पैदल जब चलेगा आदमी, चाहे राजा हो चाहे राजकुमार हो, भूमि पर चलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने ऐसे देखा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये सोच कर तब आगे चल के वो कुछ वर्णन करता है इन बातों को। तो पहले से लेकर के 7 पद तक इन बातों को एक बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन में आगे चलता है और कैसे उन सारी चीज़ों को निर्णय करता है, अधिकारी का व्यवहार कैसा है, बुद्धिमान किस तरह से उसको समझता है, रोमियो 13 अध्याय उसके 2 पद में जो अधिकार का सामना करता है वो उसे परमेश्वर की विधि का विरोध करता है। किसी भी अधिकार का अगर हम सामना करें, जो हमारे अगुए हैं, लीडर हैं, शासक हैं, अगर हम उनसे उनका सामना करते हैं, उन्हें कुछ कह दिया तड़क से, क्या आपकी मजाल क्या, आपने हमें बोल दिया, आपकी क्या आपने क्यों कहा हमें, अगर सामना करता है परमेश्वर का कहता है परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, क्योंकि परमेश्वर ने विधि ठहराई है, परमेश्वर नियम ठहराया है, उसने शासकों को ठहराया है। होस्ता शासक अनुचित हो शासक होता शासक गलत हो, लेकिन हमें परमेश्वर के पास आना है, उसकी स्थिति में परमेश्वर के पास जाकर के उसको कहना है। सो यह है, मूर्खता के कारण कई निर्णय अव्यवहारिक होते हैं, परंतु भूमि पर पैदल चलने के को सबको चलना पड़ता है। आगे चल करके तब तीसरा बात को हम देखना चाहेंगे, बुद्धिपूर्ण मान्यताएं अनुपयुक्त समय। जो हमारी बुद्धि के साथ बनी हुई हमारे मान्यताएं, सोच हैं, विचार हैं, निर्णय हैं, लेकिन समय सही नहीं है, अनुपयुक्त समय पर अमान्य हो सकती हैं। अगर समय सही, हमारा सोच विचार प्लान योजना बुद्धि सेट कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं, दोनों चीज़ को साथ साथ चलना है, हमें उपयुक्त समय को भी देखना है। सो परमेश्वर समय का संचालन करने वाला है, एक विश्वासी को समय का संचालन देखना है। जैसे माफ़ कीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत पहले से काम किया, लेकिन समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी कि जब एचएल छोड़ करके मैं सेवा में हूँ, रुकना पड़ा। जब मैं उस समय जल्दीबाजी में था, लोगों ने मुझे प्रभु के सेवक ने कहा नहीं अभी तुम्हारा समय नहीं है, अभी तुम रुको, थोड़ी देर रुको, और तब उन्होंने कलीसिया में देखा मैं कलीसिया में किस प्रकार का व्यवहार कर, कलीसिया में कैसा हूँ। और कुछ समय बाद जब ऐसा समय हुआ, तब उसके बाद तब मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग में जब मैंने कहा कि मेरे अंदर ये बोझ है कि मैं प्रभु की सेवा में हूँ, जो कलीसिया के हमारे एल्डर्स थे, मैं प्रभु की सेवा में हूँ और ऐसा प्रभु ने बोझ दिया है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो एकदम से सारे लोगों ने कहा हम भाई रॉली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हम कहते हैं भाई रॉली के, क्यों नहीं भाई रॉली विश्वास का कदम उठाते। सब इस बात में सहमत थे कि भाई रॉली को विश्वास का कदम उठा करके एचएल को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, और परमेश्वर ने मदद की। मैंने परमेश्वर से एक ही बात को मांगा है, प्रभु मुझे विश्वास का वरदान दीजिए, और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज तक प्रभु ने मेरी सहायता की, अभी भी मैं रोता हूँ प्रभु के सामने, अभी भी रोता हूँ, बहुत सारी चीज़ें प्रभु मेरे मन को जानता है, और सच में, और इसीलिए मैं कहता हूँ लोग चंगाई का वरदान मांगते हैं ताकि उनका नाम ऊँचा हो जाए, लोग किसी और चीज़ का वरदान मांगते हैं ताकि नाम उनका हो जाए, अलग रीते, लेकिन कितनी बार आप प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे दें, प्रभु हमें प्रेम का वरदान दे दें, उन वरदानों का अध्ययन कीजिए, प्रभु हम प्रभु के देने का वरदान मिल जाए, प्रभु में दूसरे की सहायता करने का वरदान मिल जाए, ये वरदान हम नहीं मांगेंगे, ये नहीं मांगेंगे, हम वो वरदान मांगेंगे जिससे हमारा नाम दूसरों के सामने बढ़ जाए। और आज बहुत सारे लोग इसी तरीके से पीछे चले, पर प्रभु से मांगिए कि प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे, और इसलिए समय और ये सारी चीज़ दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। और इसलिए कई बार जैसे कहते हैं उपयुक्त समय पर, और अर्थात इसका अर्थ है कि आपने बुद्धि के साथ कुछ योजना बनाई है या कुछ कार्यों को ठहराया है, परंतु उसका समय ठीक नहीं है, तो हो सकता है वो पूर्ण ना हो। अर्थात बुद्धि के साथ मान्यताओं को निर्धारित करना, समय अनुकूल होना अनिवार्य है। राजा सुलेमान कहता है जो दूसरे की हानि चाहता है उसकी हानि ही होती है। 8वें पद में जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिर सकता है, और जो दीवार पर सेंध लगाता है उसे सर्प डस सकता है। दीवार में आप छेद कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि पीछे सांप बैठा है या दीवार के अंदर सांप बैठा है। जब यहाँ ईंटें रखी रहती हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ चाहे कहीं भी हमारे चर्च में कहीं भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि अक्सर सांप जो है ईंटों के बीच में आके छिप के बैठ जाता है। यहाँ जब कई बार पिछले दिनों में हमने ईंटें हटाई, अक्सर वहाँ पर पहले सांप निकलते थे। तो हम बहुत वॉचफुल रहे, हमेशा सचेत रहे कि देखें हमें। तो वही इसी तरह से गाँव में कई बार इस समय तो जो प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, वो व्यवहारिक बातें कर रहा है, उसे सचेत करना चाह रहा है। कह रहा है जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है, हमें दूसरे की हानि के लिए पीछे नहीं पड़ना है, कोई ऐसा काम नहीं करना कि वो उसमें गिरे। लेकिन इसीलिए सुलेमान कहता है नीति योजना 17:13 पद में, मैं कहता हूँ जो भलाई के बदले बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। जो भलाई के बदले में बुराई करता है, कई बार आप हमारे लिए भलाई कर रहे हैं या किसी भाई के लिए भलाई कर रहे हैं, किसी बहन के लिए भलाई, लेकिन वो आपके लिए बुराई कर रहा है, आपकी हानि करना चाह रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर उसके घर से कभी बुराई दूर ना होगी। इन वचनों को याद करना चाहिए और ये वचन मुझे और आपको सचेत करें ताकि हम अपने जीवन के निर्णय को सही रीति से ले सकें, सही रीति से चल सकें। कई बार हम भूल जाते हैं वचनों को, और वचनों को भूलने के कारण हम ऐसा काम करते हैं और बाद में हानि का कारनामा पहुँच जाता है। अतः वो कहता है 10वां पद, यदि कुल्हाड़ी बोतरी है, मतलब उसमें धार खत्म हो गई है, और व्यक्ति उसी धार पहनी ना करे तो उससे अधिक बल लगे। अगर उस पर धार नहीं है और कुल्हाड़ी के लेके वो लकड़ी काट रहा है तो दम लगाएगा लेकिन लकड़ी नहीं काटेगी, थक जाएगा, हार जाएगा। तो उसको क्या करना होगा, पहले उस कुल्हाड़ी में धार लगानी होगी। हमें अपने जीवन को पहले संवारना होगा, हमें अपने जीवन को बनाना होगा। जब हम अपने जीवन को बना लें, संवार लें, तब हम कदम बनाएं तो परमेश्वर उसमें आशीष देता है। बुद्धिमानी, इसलिए आगे कहता है वो, बुद्धिमानी में सफलता प्रदान करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, हमें हमेशा इस बात को देना है। मूर्ख के बारे में जब आप बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मूर्ख का चरित्र स्वभाव कैसा है, उसकी भाषा पर विश्वास नहीं किया जाता। मूर्ख उसकी भाषा पर, उसकी बोली पर, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, दो दिन बाद गायब, विश्वास नहीं किया जाता। हम कैसे विश्वास करें भाई, बार बार हमने कितने लोगों को देखा है ऐसे बात करते हैं। वो पाप से प्रेम करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पाप से घृणा करता है। जो मूर्ख है वो पाप से प्रेम करता है, पर बुद्धिमान पाप से घृणा करता है। नीति वचन 13:5 पद, नीति वचन 14:8-9 पद, 19:3 पद, इन सारे पदों में इनका सब कुछ का वर्णन है। मूर्ख आसानी से झूठ बोलता है, आसानी से झूठ बोलता है। और मालूम परमेश्वर का वचन कहता है झूठ से परमेश्वर घृणा करता है, हेट करता है। मुझे और आपको सावधान रहना है। और तब आगे चल के लेता है, धर्मी झूठ से घृणा करता है। नीति वचन में धर्मी झूठ से क्या मतलब है, जब परमेश्वर का स्वभाव मेरे और आपके जीवन में आता है और पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन को संचालित कर लेता है पवित्र वचन, तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो स्वभाव आता है कि हम झूठ से घृणा करने लगते हैं। मूर्ख में कोई विवेक नहीं पाता, वो बहुत सरलता से परमेश्वर को और लोगों को दुखित करता है। मूर्ख जो है बहुत सरलता से परमेश्वर को और लोगों को दुखित करता है। वो कभी अफसोस जाहिर नहीं करेगा, वो कभी क्षमा नहीं मांगेगा, वो कभी नहीं कहेगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, हो गया, होता जाए, कोई बात नहीं। वो संसार और शरीर की बातों पर आनंद उठाता है, और इसीलिए वो कहता है मूर्तक कदम, मूर्तक की बात 10:12-14 तक आगे होता है, कहता है उसका भविष्य अनिश्चित होता है। वो बुरे लोगों अगों को तैयार करता है, जितने भी उसके साथ लोग होंगे, अगर वो में एक है उसके साथ चार मित्र हैं तो चारों मित्र को वो नकारात्मक जीवन में आगे बढ़ाता है। आप कैसे लीडर हैं, हर एक जन लीडर है, आपके साथ एक एक दो दो तीन तीन जन है, आप किसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, आप क्या सिखाते हैं या वो आपको क्या सिखाता है, इसको समझना है। अगर वो आपके दिमाग को नकारात्मक बना रहा है तो मूर्ख अगुआ है और आपको भी मूर्ता में ले आ रहा है। और ऐसे से इसीलिए कहता है उससे तू अलग रह। नीति वचन 14:7, मूर्ख से तू अलग रह, स्पष्ट निर्देश आ गया है। 23:9, नीति वचन 23, उससे बात मत कर, यहां तक लिखा तो उससे बात मत कर, उससे अलग रह, बात कर, वो अपने आप को, स्वयं को अपना शत्रु बना रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को स्वयं शत्रु बना रहा है। मेरे प्रिय, ये स्थिति है, और इसलिए इन सारी बातों को वर्णन करते हुए आगे बढ़ता है। कहता 15 पद में, मूर्ख का परिश्रम उसे इतना थका देता है कि वो भी नहीं जानता कि नगर में कैसे जाए, उसका सब हाथ पैर मारना व्यर्थ है। उसके परिश्रम पर उसे आशीष नहीं मिलती, लेकिन थकान ही मिलती है, हार मिलती है, परास्त होता है, निराशा मिलती है, ये मूर्ख है। वो कहता है, हे देश, तुझ पर आए जिसका राजा नाबालिग है तथा जिसके शासक प्रातःकाल भोज करते हैं, हे देश तू धन्य है जिसका राजा कुलीन और जिसके अधिकारी उचित समय पर बल बढ़ाने के लिए भोजन करते हैं। क्या कहना चाह रहा है? एक शासक है जो मूर्ख है, एक शासक है जो कुलीन बुद्धिमान है। दोनों में किस प्रकार से वो शासन को चला रहा है, किस प्रकार से? तब आगे चल के 18 पद में कहता है, आलस के कारण छत की कड़ियाँ झुक जाती हैं और ढिलाई के कारण घर टपकने लगता है। आलस के कारण क्या होता है? एक आलसी और ढिलाई। मसीह जीवन आलस का जीवन नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। रात में 11-12 बजे तक गप मार रहे हैं। यहाँ पर इसीलिए बच्चों को सिखाया जाता है, उन्होंने अनुशासित किया जाता है। कई बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता, हम 10 बजे बाद किसी को मोबाइल पर नहीं रहने देते, यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली इस बात को रोकते हैं। अनुशासन ज़रूरी है, सुबह जब टाइम से उठना है, टाइम से करना है। यहाँ पर हम डिसिप्लिन को चाहते हैं और सच है। और जब तक हमारे जीवन में, हमने अपने जीवन को डिसिप्लिन बनाया, अनुशासित किया, अगर वो नहीं हमारे जीवन में, जब चाहे सो रहे हैं, जब चाहे उठ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे अभी तो बहुत देर है, वो क्या कह रहे हैं, आलस। क्या आपका समय निर्धारित है? सुबह उठ के मुझे प्रभु के साथ समय व्यतीत करना है। सुबह उठ के, हाँ अगर काम पे जाना है, स्कूल जाना है, ड्यूटी पे जाना है, तब बात है, तब मैं जल्दी उठ जाऊँगा या जल्दी उठ जाऊँगी। लेकिन अगर मेरी छुट्टी है, आज तो बहुत छुट्टी, संडे की छुट्टी है, चलो आज आराम कर लेंगे, घर में बैठ के यूट्यूब में मैसेज सुन लेंगे या बाद में तो आ ही जाएगा सुन लेंगे, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का भवन परमेश्वर का भवन है, हम तत्पर और तैयार रहते हैं। जैसे दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चलें, भजन संहिता 122:1, मेरा मन आनंदित हुआ। रविवार का दिन परमेश्वर के भवन में आना मेरे लिए आनंद की बात है, बोझ की बात नहीं है, पीड़ा की बात नहीं है, बर्डन नहीं है, दिस इज नॉट बर्डन, ये अब तक नहीं, हमारा एक आनंद है कि हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। मैं कह रहे हैं, कह रहा है और ढिलाई के कारण घर टपकने लगता है। ढिलाई है, चूरा है, अरे कोई बात नहीं, कल हो जाएगा ठीक, अरे परसों जाएगा, लेकिन जहाँ एक बूंद टपकी हमने उसको रिपेयर कर लिया, तुरंत रिपेयर कर लिया। अभी हम किसी घर में पिछले दिनों में गाँव में गए, हमने देखा बेचारे उनके पास अच्छी छत भी नहीं है, बड़ी वैसे रह रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जहाँ पर काम करते उनको एक अच्छा तिरपाल मिला, उन्होंने उसको तिरपाल लगा के, क्यों लगाया? ताकि पानी ना नीचे आए, उनके पास छत नहीं है, लेकिन उसको लगा के ताकि वो वहाँ पर बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और भी कुछ बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसा कर रखा। मेरे प्रियो, सच में हमें देखना है, लेकिन हम दूसरों को देखकर दूसरे की सहायता करने तत्पर तैयार नहीं होते। हमारे पास, हमें अपनी चिंता रहती है, हम आगे 19 पद में, आमोद प्रमोद के लिए लोग भोजन बनाते हैं तथा मदिरा जीवन को उल्लास से भर देती है, रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। वो कह रहा है कि लोग कैसे सोचते हैं, मूर्ख सोचता है, लेकिन क्या कह रहा है, तू राजा को अपने विचार में भी शाप ना देना और ना किसी धनवान को अपने शयन कक्ष में शाप दे, क्योंकि आकाश का पक्षी क्या करेगा, आकाश का पक्षी ध्वनि को ले उड़ेगा और उड़ने वाला प्राणी बात को प्रकट कर देगा। कहीं ना कहीं से हम जब दूसरों से बातचीत करते हैं, दूसरों के लिए बात करते हैं, हमें सावधान रहना है। क्या कह रहा है, आकाश का पक्षी आपकी बात को सुनेगा, चाहे आप चार कमरे में करें, और वो उठ करके वहाँ पर हाकिम तक पहुँचा देगा। सो हमें हमारी वार्तालाप, हमारी बातचीत, हमारा सोच विचार, हमारा कार्य, हमारा जीवन, क्या ये सब आलस में है, क्या सब ये मूर्खता में है, हमें सोचना है। सुलेमान बार बार उस बात को दे रहा है कि परमेश्वर ने हमें मूर्खता का जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं चुना, नहीं बनाया, पर प्रभु का धन्यवाद हो, आज प्रभु यीशु मसीह में होकर उसने हमारी मूर्खता को भी अपनी क्रूस पर ले लिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और संसार के दृष्टि सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, नए अनुवाद में लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने, बाइबल स्टाइम ने कहा तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम्हारा स्वभाव बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ परमेश्वर की क्या इच्छा है। मेरे प्रिय कि विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा के खुद खोजना है। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको चिंता हो रही है कि आपके बच्चों को कल शादी होनी, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन अब आपका काम क्या है, आप अभी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अपने समय में हमारे बच्चों के लिए जीवन साथी का इंतजाम करिए, वो इंतजाम करिए जो आपका भय मानते हो, आपसे प्यार करते हो, और प्रभु अपने उपयुक्त समय पर वो सब कुछ करेगा। क्या मतलब है, बुद्धि हमेशा परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाती है, परमेश्वर पर निर्भर होना, लेकिन मूर्ता अपने स्वयं के जीवन को अपने आप संचालित कराती है। विचार ये है, प्रश्न है, आज हम किस प्रकार का जीवन रखते हैं, कितना अधिक हम परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सुलेमान खत्म कर रहा है, 11 अध्याय में हम कुछ और में आएंगे, तब 11 अध्याय में, फिर 12 अध्याय में वो मनुष्य के बारे में बताएगा, मनुष्य की स्थिति क्या है। ये शरीर के बारे में हमने भी देखा था कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जिस परमेश्वर आशीष देता है, तो उनकी आयु बढ़ती है, सब कुछ है। लेकिन आगे चल के 12 अध्याय में वो बहुत अच्छी तरह वर्णन करता है, ये खोपड़ी क्या है, आँख क्या है, कान क्या है, नाक क्या है, दांत क्या है, इन शरीरों के अंगों को लेके वो बातों को बताता है कि इनकी स्थिति क्या है, परमेश्वर का वचन कैसे। तो उसने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। सुलेमान इतना ज्ञानी था, उसके श्रेष्ठ की पुस्तक में वो प्रेम का प्रभाव दिया गया है, किस पद का सुलेमान के साथ, नीति वचन में वो सारी शिक्षाएं जो हमारे जीवन के लिए, नैतिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सबोपदेशक में वो उपदेश हैं जो सचमुच में मेरे और आपके जीवन के लिए, उन उपदेशों को समझना, मालूम करना और पालन करना है, जिसको उसने परमेश्वर से दूर रह करके और परमेश्वर के पास आकर के समझा है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम सचमुच में इस बात को समझ सकें और परमेश्वर मेरे और आपके अंदर और अधिक इच्छा उत्पन्न करें कि हम उसके लिए बुद्धिमान मांग सकें। आज के संदेश से मेरे और आपके लिए क्या चुनौती है, पहली बात क्या चुनौती है कि हम आज भी मूर्ता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या हमें और अधिक परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है। क्या हम भी बुद्धि को तुझ जान रहे हैं, मूर्ता के साथ जीना चाहेंगे, या परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे और उसकी सहायता से जीवन को व्यतीत करेंगे। हमारा निर्णय क्या होगा, हम क्या मांगेंगे प्रभु से, आइए हम प्रार्थना करें।